सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी करने वाले मेरे सभी प्यारे नौजवान साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का नमस्कार। फ्रेंड्स, आज 28 मार्च 2017 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन दो नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की अक्टूबर नवंबर में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन नौजवान साथियों के नाम हैं संदीप कुमार श्रीवास, आप चांपा छत्तीसगढ़ से हैं, और जितिन कुमार सिंह, आप बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के हैं। तो संदीप और जतिन, आप दोनों मित्रों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, अब मैं आता हूं न्यूज एनालिसिस पर, और न्यूज एनालिसिस की शुरुआत मैं एआईआर के पहले न्यूज से करता हूं जो आधार कार्ड को लेकर है। आपने डीडी न्यूज अगर देखी हो तो एक्सपर्ट के रूप में जो बुलाए गए थे, आधार कार्ड के बारे में कुछ बात हुई, कुछ उत्तर प्रदेश में जो अभी एडमिनिस्ट्रेटिव एक तरीके से जो जोश खरोश चल रही है उसके बारे में कमेंट के लिए बुलाए गए थे, लेकिन उसमें आधार कार्ड के बारे में थोड़ी सी डिटेल में बात की गई थी। देखिए, आधार कार्ड से जुड़ी खबर क्या है कि पिछले सब कुछ समय से आपने ध्यान दिया होगा कि सरकार जो डिजिटल इंडिया, डिजिटलाइज्ड इंडिया के तहत कोशिश कर रही है कि चीजों को किस तरीके से ज्यादा डिजिटल में कन्वर्ट किया जाए। लेन देन के मामले में डिजिटल आ रहा है, ज्यादा से ज्यादा आप भुगतान क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या और जो दूसरे माध्यम होते हैं उनके जरिए करें। सरकार ने यह भी कह दिया कि आप अपना जब इनकम टैक्स असेसमेंट करेंगे तो उसमें भी आप आधार कार्ड का नंबर दें, पासपोर्ट में भी करने जा रही है, मिड डे मील में करने जा रही है, गैस सिलेंडर में करने, धीरे 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 इन सब चीजों में आधार कार्ड को ऐड करने जा रही है। और इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि क्योंकि आधार कार्ड एक यूनिक नंबर होता है, एक ही नंबर है, अगर एक नंबर है तो उसी व्यक्ति का हो सकता है, इसलिए वो आधार कार्ड को इतना महत्व दे रही है। आपके अब यहां तक कि मोबाइल का भी सत्यापन आधार कार्ड से होने जा रहा है। नो डाउट कि इससे सिक्योरिटी तो जुड़ी ही हुई है, राष्ट्रीय सुरक्षा जुड़ी हुई है, साथ ही साथ जो भ्रष्टाचार होता है, गलत काम होते हैं, धोखाधड़ी होती है, उस पर भी नियंत्रण इसके आधार पर लगेगा, तो एक अच्छी कोशिश है। दूसरी चिंता इसको लेकर इस बात की भी है कि आधार कार्ड के माध्यम से सरकार के पास सारे डेटा आ जाएंगे तो जो प्राइवेसी है, लोगों की प्राइवेसी खत्म हो सकती है, कोई आधार कार्ड के सूचना लेकर के उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है, तो इसको लेकर के भी एक गहमा गहमी बहस हो रही है और कल पार्लियामेंट में इसको लेकर के भी सवाल उठाए गए हैं और सरकार एश्योर कर रही है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, हम सुरक्षा के पूरे पुख्ता इंतजाम कर रहे हैं। जो न्यूज में थे दोस्तों, उसको थोड़ी सी उसकी आप बारीकी को समझिए कि सुप्रीम कोर्ट ने दो तरह की चीजें एक साथ कही हैं। पहली बात तो उन्होंने कह दिया कि सरकार के जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो वेलफेयर ओरिएंटेड जो प्रोग्राम्स हैं, उसके लिए आधार कार्ड अभी जरूरी नहीं है। इसके बाद उसने ये भी कहा है कि एक सात सदस्यीय एक संवैधानिक बेंच बैठाई जाएगी और वो फिर इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करेगी। ये जो आधार कार्ड का मामला है, ये अभी से नहीं, जब से ये शुरू हुआ था तब से ये डिस्प्यूटेड है। मनमोहन सिंह जी उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे, उस समय से ये डिस्प्यूटेड बना हुआ है। और आप देखेंगे कि सिविल सर्विस के 2013 में इसी को आधार बना करके क्वेश्चन भी पूछा गया है, प्री में भी क्वेश्चन है और मेन्स में भी क्वेश्चन है। लोगों को ये लगता है कि आधार कार्ड के आधार पर एक तो प्राइवेसी पर हस्तक्षेप हो रहा है और दूसरा इससे हमारे मूल अधिकारों का भी हनन होगा, उसके अपने अपने अलग अलग तर्क है। कल जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है उसमें जो बारीक जो अंतर है, जो सबसे पकड़ने वाली बात है फ्रेंड्स, वो केवल ये है कि उसने कहा है कि नहीं, सरकार अपने ढंग से दूसरी चीजों में कर सकती है, लेकिन जो वेलफेयर ओरिएंटेड प्रोग्राम है उसमें वो अभी आधार को अनिवार्य नहीं कर सकती। वो सिर्फ ये कह रहे कि वेलफेयर ओरिएंटेड, जैसे मान लीजिए कि मनरेगा की मजदूरी देना, उसमें आप आधार कार्ड को करने लगे, मिड डे मील ही जैसे है, अब गरीब बच्चों को भोजन मिलना है उसमें इसको करने लगे, या हेल्थ से रिलेटेड जो इश्यू हैं, क्योंकि अभी आधार कार्ड अभी भी सभी लोगों तक पहुंचा नहीं है। सरकार का भी दावा यही है कि 96-97% लोगों तक पहुंच गया है और जो बचे हुए लोग होंगे वो, सच बात यह है कि वो जो नीचे वीकर सेक्शन के लोग ही होंगे जिन तक नहीं पहुंच पाया है अभी तक आधार कार्ड, लेकिन धीरे धीरे हम उस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। इसकी वैधानिकता क्या होगी, अब देखिए वो सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि धीरे 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 सरकार को इसमें सफलता मिलती जा रही है। शुरुआत में तो दिक्कत होनी ही है दोस्तों, उस तरह की दिक्कत हो रही है। ये आधार कार्ड से जुड़ी न्यूज थी। दूसरी जो खबर थी फ्रेंड्स, वो मैं थोड़ा सा यूपी के ऊपर बात करना चाहूंगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अभी तो कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कि यूपी की के समाचार ही कुछ राष्ट्रीय समाचार जैसे बन गए हैं। यूपी में आप देख रहे हैं कि कल दूरदर्शन की खबर भी थी कि एक सप्ताह में लगभग 50 निर्णय लिए गए, एक सप्ताह में 50 निर्णय, और वो सारे निर्णय बड़े ताबड़तोड़ किस्म के निर्णय हैं, है ना। आप उनको शुरू में आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि कोई तानाशाह निर्णय ले रहा है, कोई बहुत ही अव्यावहारिक निर्णय हो रहे हैं, ये देखा ही नहीं जा रहा है कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाना संभव है या नहीं है, बिना सोचे विचारे निर्णय लिए जा रहे हैं, एक तबका ये सोचता है। देखिए, सोचने के मैं आपको केवल एंगल प्रोवाइड कर रहा हूं, और प्लीज इसमें कहीं आप मेरी राय को शामिल न करें, है ना। मैं तो एनालिसिस करने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स प्रोवाइड कर रहा हूं, मेरी जब एनालिसिस करनी होगी मुझे तो मैं अपने ढंग से लिखूंगा, मैं आर्टिकल वगैरह लिखूंगा, है ना। एक तो ये है, दूसरा ये तबका ये भी है जो ये कह सकता है कि नहीं, बिना इसके बात भी नहीं बनती है, आफ्टर ऑल अभी तक सब चीजें तो ठीक ठाक तरीके से ही कही जाती थी, कोई टाइम बाउंड नहीं किया जाता। जैसे गोमती नदी के लिए चीफ मिनिस्टर ने कह दिया कि मुझे मई तक साफ चाहिए, मार्च खत्म हो गया, अप्रैल मई 2 महीने बचे हुए हैं, अब 2 महीने में आप पूरी गोमती नदी को साफ करा करके दीजिए मुझे, और पता लगा कि ये 2 साल से चल रहा है वो उसमें साफ नहीं हो पा रहा है। तो अब दूसरा एक तबका है कि बिना इसके बात भी नहीं बनती, जब तक इस तरह का एक हार्ड स्टेप न लिया जाए, टाइम बाउंड ऑर्डर न दिया जाए, तब तक प्रशासन चुस्त दुरुस्त होकर के काम भी नहीं करता है, सारा जो फंड है हमारा वो भ्रष्टाचार में खत्म हो जाता है। एक दूसरा तबका ऐसा भी है जो ये मान करके चलता है। अब आप देखें कि इसमें समस्या कहां है, फिर सच पूछे तो अगर आप थोड़ा सा भी इत्मीनान के साथ सोचेंगे, थोड़े भी इत्मीनान के साथ विचार करेंगे तटस्थ होकर के, तो आप पाएंगे कि हमारे देश में इनफैक्ट रूल्स रेगुलेशंस की कमी नहीं है, चाहे गोमती की सफाई हो, गंगा की सफाई हो, अभी इसकी बात नहीं है, राम तेरी गंगा मैली फिल्म बहुत पहले से आ चुकी है ना, आज उसको आए हुए 35-40 साल हो गए हैं, तब से राम गंगा मैली ही चली आ रही है। तो हमारे यहां न तो समझदारी की कमी है कि अच्छा अभी हमको पता लगा कि गंगा मैली हो गई, नंबर वन। नंबर दो कि जब समझदारी आ गई तो एक्ट की भी कमी नहीं है, दुनिया भर के कानून बनाएगी, किस क्षेत्र में हमारे पास कानून नहीं है, आप देखिए एक्ट की कमी हमारे पास नहीं है, हर क्षेत्र के लिए एक्ट है, एक्ट भी है, एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप होना चाहिए वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप भी है, और हमारे पास जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के जो लेयर्स हैं आप उनको देखने की कोशिश कीजिए। मैं जानबूझ करके आपको अलग तरीके से इस तथ्य को बताने की कोशिश कर रहा हूं। एक हमारे पास पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है जो सरकार के अंडर में काम कर रहा है। सेकेंड लेयर में आप देखिए कि सेकेंड लेयर में हमारे पास एनजीओ की बहुत बड़ी संख्या है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो स्वच्छता अभियान से जुड़े हुए हैं, और कई कई तरह के जो हमारी सोशल प्रॉब्लम्स है उसमें इन्वॉल्व है। तीसरा जो लेयर है वो लेयर हमारे पास एक्टिविस्ट का भी है जो इन सब की एक तरीके से देख रेख कर रहा है, सिविल सोसाइटीज हैं जो इनको इनपुट प्रोवाइड कर रहा है, जुडिशरी है जो एक जो सिटीजन्स है उनके हाथ मजबूत कर रहा है, हमारे पास आरटीआई जैसे कानून है जो एक तरह से जिसने हर सिटीजन को इंस्पेक्टर बना दिया, आप जाइए और देखिए कि गंगा साफ हो रही है कि नहीं हो रही है, गोमती साफ हो रही है कि नहीं हो रही है, आप पूछ सकते हैं ना। जैसे बूचड़खाने का मामला है, बूचड़खाने के मामले में कोई भी सिटीजन जाकर के सरकार से पूछ सकता है कि भाई ये जो इस नाम का जो बूचड़खाना इस एड्रेस पर है ये बताइए आपके यहां रजिस्टर्ड है या नहीं है, पूछ सकता है। इतनी बड़ी ताकत भी हमारे नागरिकों के पास है, लेकिन इन सब के बावजूद चीजें हो क्यों नहीं रही हैं? हमारे पास रिसोर्सेज भी हैं, देखिए फंड्स की कमी नहीं है, भले ही हमारे देश की बहुत बड़ी आबादी गरीबी में रह रही है, हमारे यहां आर्थिक डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है। अनफॉर्चुनेट पार्ट यह है कि जो रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल ठीक तरीके से नहीं हो रहा है, यानी कि हमारे पास सब कुछ है, जो प्रॉब्लम है वो करने में है, इम्प्लीमेंटेशन में है। द रियल प्रॉब्लम ऑफ इंडिया इज इम्प्लीमेंटेशन। डेवलप्ड कंट्री में आप चले जाइए तो डेवलप्ड कंट्री में ना तो आपको इतने एक्ट मिलेंगे ना वो कुछ मिलेंगे, वहां जो सबसे ज्यादा जो जोर है वो इम्प्लीमेंटेशन में है कि अगर कोई चीज इम्प्लीमेंट करनी है तो उसको करनी ही है, फिर उसमें कोई लिबर्टी नहीं है, वो हमारे यहां नहीं है। अब आप देखिए कि इम्प्लीमेंट करने की जो इमीडिएट एजेंसी है वो तो एडमिनिस्ट्रेशन ही है, जो सरकार के अंडर में है, जो सरकार है अपने आप में। तो अगर इम्प्लीमेंटेशन अगर करना चाहते हैं, उस पर जोर देना चाहते हैं, तो आप किस पर दबाव डालेंगे? तो आपके पास सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन ही बच जाता है कि आप एडमिनिस्ट्रेशन पर दबाव डालिए। तो यह एक और पक्ष है मित्र, जो मैंने आपको एक पैटर्न बताया कि किस तरीके से काम होते हैं और इनफैक्ट समस्या कहां है, समस्या इम्प्लीमेंट करने पर है। जैसे अब बूचड़खाने के मामले कोई देखिए कि यूपी सरकार ने निर्णय लिया, राइट? अब इसके ऊपर आपको दो तीन एंगल्स पढ़ने को मिलेंगे और आपके दिमाग में भी आ रहे होंगे। पहली बात, अब ये संयोग की बात है कि इस तरह के जो स्लॉटर हाउस हैं वो मुस्लिम समुदाय के पास ज्यादा हैं, तो आप इसे बीजेपी के द्वारा एंटी मुस्लिम स्टेप भी करके देख सकते हैं कि उनको तंग करने के लिए उनके विरोध में सरकार आई है, जबकि सरकार बहुत स्पष्ट रूप से कह रही है कि भैया हम तो अवैध बूचड़खानों को केवल बंद कर रहे हैं। सरकार बार बार स्टेट में अवैध बूचड़खाने, अब अवैध बूचड़खाने चाहे किसी के भी हों, हिंदू को हों, मुसलमान के हों, सिख के, ईसाई, अगर अवैध हैं तो अवैध है, वो गलत काम हो रहा है, वो बंद होने चाहिए। लेकिन अखबारों में आपको अलग तरीके से पढ़ने को मिलेगा। और हो सकता है कि जैसे जब चीजें आप इम्प्लीमेंट करते हैं, इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी फिर से एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो नागरिक प्रशासन हो, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, ये इम्प्लीमेंट करते हैं, तो जब वो इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं तो हो सकता है कि वो कुछ गलत भी कर रहे हो, गलत हो जा रहा हो या जानबूझकर गलत कर रहे हो। अब ये सारी चीजें जब प्रैक्टिकली जब चीजों को लाया जाता है तो उनकी संभावनाएं होती, उनकी आशंकाएं होती हैं। अब उनको आप किस तरीके से लेते हैं, कितना मिनिमाइज कर सकते हैं, ये भी सरकार के ऊपर होता है कि कितना मिनिमाइज कर सकते हैं। वहां फिर से उसको सुपरवाइजरी कैपेसिटी अपनी बढ़ानी पड़ेगी, कहीं ना कहीं सख्ती लानी पड़ेगी, चीजों को बहुत अच्छे तरीके से देखना पड़ेगा ताकि कहीं गलत कदम न उठ जाए। तो दोस्तों, अभी खासकर जो यूपी में जो घटनाएं हो रही हैं, मैं जो अब आपको सिविल सर्विस के लिहाज से बात कहना चाहूंगा वो ये कि आप उसे अभी एक बहुत अच्छी प्रयोगशाला के रूप में देखें कि वो प्रशासन की प्रयोगशाला जैसा आपको दिखाई दे रहा है, और आप उस पर विचार करें, खूब विचार करें, एक तरफा मत सोचे। आपका जो अपना व्यू हो उसको किनारे रख दें, लेकिन अगर उस व्यू को आप जस्टिफाई करना चाहते हैं तो तर्क लेकर के आए, दिमाग को खुला रखें, एकदम खुला रखें। हिंदू मुस्लिम उत्तर प्रदेश फलाना प्रदेश और धर्म और जाति और इन सब से बिल्कुल अलग हट करके और इस रूप में देखें कि इनफैक्ट होना क्या चाहिए और कैसे किया जा सकता है, तब आप देखेंगे कि हो सकता है कि आपका दिमाग आपको कुछ नए तथ्य उपलब्ध कराए और फिर आप कुछ दिनों के बाद पाएंगे कि घटनाओं को देखने का आपका अंदाज भी बदल जाएगा, आपका तरीका भी बदल जाएगा, आप थोड़े से तटस्थ होंगे। और देखिए, आपको सिविल सर्वेंट बन करके तटस्थता के चरित्र को तो अपने अंदर शामिल करना पड़ेगा, जिसको आप पक्षपात रहित कह सकते हैं, निष्पक्ष होकर के काम करना है, तटस्थ रह करके काम करना है, भाई भतीजावाद से ऊपर उठकर काम करना है, इसी को तटस्थता कहते हैं। तो मित्रों, एक खबर और थी जो इम्पोर्टेंट खबर थी, और वो थी कि हमारी संसद ने मानसिक स्वास्थ्य सेवा विधेयक पारित कर दिया है। इसके बारे में अभी कुछ ज्यादा जानकारी हमें नहीं मिली। आपको मालूम है कि मन की बात में भी प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही थी, मानसिक स्वास्थ्य की बात कही थी, और धीरे धीरे भारत में मानसिक स्वास्थ्य का संकट बढ़ता चला जा रहा है। और हमारे यहां सबसे बड़ी बात है कि जो साइकेट्रिक जो मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करते हैं, का इलाज करते हैं, उनकी संख्या बहुत ज्यादा कम है, नहीं के बराबर है। ये कहा जाता है कि पूरे देश में शायद 1500 या 2000 होंगे, सोच के देखिए, इतना बड़ा देश है, बहुत ही कम संख्या है जो सच पूछे जो बहुत ही प्रशिक्षित जो डॉक्टर हैं, बहुत ही कम उनकी संख्या है। तो इस पर आपको जरूर ध्यान रखना है। अभी अखबारों में जब आएगा तो मैं आपसे चर्चा भी करूंगा और इनपुट भी प्रोवाइड करूंगा। और ये जो विधेयक है, मुझे लगता है कि फोर्थ पेपर के लिए, आपको जो जनरल स्टडीज का फोर्थ पेपर है, इंटीग्रिटी वाला जो पेपर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम इस पर बाद में बात करेंगे। दोस्तों, रेडियो न्यूज और दूरदर्शन न्यूज से बस इतना ही। अब मैं आता हूं न्यूज पेपर्स पर। मैं आज आपको न्यूज पेपर्स की काफी क्लिपिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूं दोस्तों, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं उन क्लिपिंग्स के बारे में आपसे डिस्कस कर सकूं, उनकी एनालिसिस कर सकूं। लेकिन इसमें जो एक दो क्लिपिंग्स हैं जिस पर मैं विशेष रूप से जोर देना चाहूंगा कि आप इन्हें ध्यान से देखें, पढ़ें, क्योंकि मुझे मालूम है कि हो सकता है कि आप इसके महत्व को थोड़ा सा कम आंक कर मिस कर जाएं। वो है दोस्तों बिजनेस स्टैंडर्ड की एक एडिट क्लिपिंग है, जो इसका एडिटोरियल कमेंट है, खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा। सरकार ने अभी खाद्य राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण नीति का जो ड्राफ्ट है अभी बनी नहीं है, ध्यान रखिए अभी ये बनी नहीं है, उसका जो ड्राफ्ट है वो अभी पब्लिक के लिए ओपन किया है कि आप इसे पढ़ें और इस पर फिर अपनी टिप्पणी करें, अपने विचार दें, और फिर वो पब्लिक ओपिनियन को शामिल करके और फिर एक तरह से आपकी खाद्य प्रसंस्करण नीति बनेगी। आपने देखा है कि लगभग अब ये चीजें हर क्षेत्र में होने लगी हैं, जो भी पब्लिक से रिलेटेड है उसमें पब्लिक से इनपुट लिया जाता है, और यही डेमोक्रेसी है, और ये सच पूछे तो डिसीजन मेकिंग का सबसे अच्छा साधन भी है, सबसे अच्छा तरीका भी है। तो बाद में जो होगा वो हम देखते हैं, जब फाइनल हो जाएगा आपके काम की चीजें तो तभी आएंगी, लेकिन अभी जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं एडिटोरियल कमेंट, इसे आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा। उस मसौदे में अभी क्या क्या चीजें हैं वो आपको जानने को मिलेंगी, और साथ ही साथ आपको ये भी जानने को मिलेगा कि उसमें लैकिंग कहां है, उस मसौदे में भी क्या कमी है। और इसी के साथ ही एक दैनिक भास्कर का एक न्यूज आइटम है फ्रेंड्स, खासकर कोल्ड चेन प्रोजेक्ट को लेकर। डीडी न्यूज में आपने देखा होगा कि कोल्ड चेन को लेकर के जो मिनिस्टर हैं उन खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रही थी, जो हमारी मंत्री हैं प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस कर रही थी। उसमें उन्होंने बताया कि 101 कोल्ड चेन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें लगभग 3100 करोड़ रुपए का निवेश होगा। खैर वो एक अलग बात है, आंकड़ों की बात अलग है, लेकिन फ्रेंड्स ये जो दोनों क्लिपिंग जिनकी चर्चा में मैंने अभी की है, सच पूछे तो एक दूसरे से रिलेटेड है, और ये एग्जामिनेशन के लिहाज से खासकर 2017 के मेंस की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये किसानों से जुड़ी हुई चीज है, किसानों की आय में वृद्धि से जुड़ा हुआ है। आप देखिए कि हिंदुस्तान सब्जी वगैरह पैदा करने के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, और हमारे यहां जो प्रोसेस्ड होती है चीजें, जो प्रसंस्करित हो पाती हैं, जिनको हम टिकाऊ आइटम के रूप में कन्वर्ट कर पाते हैं, जैसे कि आलू नहीं टिकेगा लेकिन आलू के आप चिप्स बना लेंगे तो वो टिक जाएगा, टमाटर नहीं टिकेगा लेकिन टमाटर का आप सॉस बना लेंगे तो वो टिक जाएगा, ये प्रसंस्करित करना होगा, केवल 2.2% है, बाकी पूरा का पूरा हिस्सा खत्म हो जाता है या तो बिक जाता है, और ज्यादातर हिस्सा तो नष्ट ही हो जाता है। लगभग 1,00,000 करोड़ रुपए की सब्जी और ये सब फल सब्जियां हमारी खत्म हो जाती हैं, इसलिए क्योंकि हमारे पास कोल्ड चेन नहीं है। कोल्ड चेन का मतलब है कोल्ड स्टोरेज, कि आप सब्जी भाजी तोड़ करके लाते हैं या कोई चीज पैदा करते हैं और उसे फिर आप कोल्ड स्टोरेज में रख देते हैं और उसमें वो कुछ समय तक सुरक्षित रहता है, जैसे कि आपके घर का फ्रिज। वैसे दूध दोपहर तक फट जाएगा गर्मी के दिनों में, लेकिन अगर आप उस फ्रिज में रख देंगे तो उसे अगले दिन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो भारत के लिए ये बहुत जरूरी है, इस लिहाज से आप इसको पढ़ेंगे डिटेल में, काफी अच्छे दोनों क्लिपिंग्स में आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, प्लीज इसको आप देख लें। दोस्तों दूसरे क्लिपिंग्स की तो मैं आपसे बात करने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन फिर इस भय से कि कहीं आप उसे इग्नोर न कर जाएं, एक क्लिपिंग्स मैं हिंदुस्तान दैनिक हिंदुस्तान अखबार की प्रोवाइड कर रहा हूं, जिसका शीर्षक है दलाई लामा की गतिविधियों से क्यों हिल जाता है चीन। बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ और बिल्कुल नए एंगल से, कि भाई दलाई लामा तो कोई अब शासक नहीं है, दलाई लामा के पास कोई सेना नहीं है, कोई वो प्रधानमंत्री नहीं है, इसके बावजूद चीन क्यों परेशान हो जाता है। अब चूंकि अरुणाचल प्रदेश में जो जगह है तवांग, देखा होगा आपने कि उसको लेकर के चीन थोड़ा सा आपत्ति भी उठाता है, और अभी जब दलाई लामा तवांग गए, अरुणाचल प्रदेश की यात्रा पर गए और ब्रह्मपुत्र उत्सव में भी शामिल हुए, तो चीन ने कहा कि इससे भारत से हमारे संबंध खराब हो सकते हैं, तो इसी को बेस बना के लिखा कि भाई आखिर में क्या रखा हुआ है, क्यों चीन परेशान होता है। खासकर भारत और चीन के संबंधों को समझने के लिए ये आर्टिकल बहुत ही अच्छा है और बहुत ही बेसिक आर्टिकल है, प्लीज इसे आप ध्यान से पढ़िएगा और इसके पॉइंट्स नोट भी कर लीजिएगा, राइट। तो मित्रों अब मैं आता हूं अंतिम चरण पर, जो ईमेल का चरण है। सभी ईमेल लिखने वाले अपने दोस्तों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं। इस बात के लिए मुझे बेहद खुशी है मित्रों कि अब हमारे जो सिक्स्थ बैच के स्टूडेंट हैं, वो पहले भी मैं एक बार कह चुका हूं लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि अब वो अपनी एक्टिविटीज को एक्टिवनेस को एक्टिविटीज को तो नहीं कहना चाहिए एक्टिवनेस को बनाए हुए हैं। लगातार अपने ईमेल के जरिए मुझे इस बात की सूचना दे रहे हैं कि उनमें किस किस तरह के परिवर्तन वो महसूस कर रहे हैं। मेरे लिए हम लोग पूरी टीम के लिए मेरे बहुत ही आत्मसंतोष की बात है कि उनमें बहुत अच्छे सकारात्मक परिवर्तन आ रहे हैं। मित्रों, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि वो आपके इस परिवर्तन की प्रक्रिया को फास्ट करे, तेज करे और आगे भी बढ़ाए। तो मित्रों, मैं अब कुछ ईमेल लिखने वाले अपने दोस्तों के नाम ले रहा हूं। वो है रवीश कुमार पटना से, राहुल राय सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से, शान अनवर फतेहपुर उत्तर प्रदेश से, विशाल गुप्ता, गोविंद प्रताप सिंह प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से, विनोद राय, अमरजीत देशम, नमन पांडे, निकिता तोमर इंदौर से, मोहिनी रावत लखनऊ उत्तर प्रदेश से, सौरभ सिंह सीधी मध्य प्रदेश से, देवनाथ पटेल रायपुर छत्तीसगढ़ से, मनीष दुबे लखनऊ से, मनीष कुमार पटना से, मानस झा पूर्णिया बिहार से, संगीता चौधरी, मजहर अंसारी न्यू दिल्ली से और राम बोल यादव। आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, इसी के साथ ही आज का यह डेली ऑडियो लेक्चर अब यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।